भाई तो हमारे जो साथी ने लिखकर भेजा है हाँ. तो इस जज्बे को तो हम सलाम बिल्कुल नहीं करेंगे हाँ. बल्कि हम कहेंगे कि सलाम उस तरह से करें कि मतलब कह दें, विदा कर दें इसको
हाँ.
इस जज्बे को, उनकी जो मासूमियत है उसको फिर से वापस लाने की कोशिश करें, कोशिश करें कि वो वैसे ही मासूम रहें. एक बार किसी का बहुत अच्छा और भी कहीं साक्षात्कार सुना था किसी सेलिब्रिटी का ही, और उसने बहुत अच्छे से कहा कि हम लोग 4-5 साल के थे, यूं ही ऐसे घूमते रहते थे बिना कपड़े पहने, और आजकल के 1 साल का भी बच्चा अगर कपड़ा नहीं पहनता तो उसको इतना शेम कहते हैं कि उसको शर्म आती है. तो इस तरीके की मासूमियत बिल्कुल गायब हो गई है, या कुछ भी कह दो तो उन्हें बुरा लगता है. तो कहीं ना कहीं ये जो हर वक्त बच्चे जो हैं इस दुनिया से अलग किसी और दुनिया में जी रहे हैं.
जी जी, कहते हैं कि देख देख कर ही सीखते हैं. तो शायद अब जो मोबाइल है वो काफी करीब है
हाँ.
तो इस वजह से काफी बदलाव उनके अंदर भी आ गया है, तो क्योंकि एक जमाना तो ऐसा था जब माँ की लोरियों के बिना और दादी की कहानियों के बिना तो नींद ही नहीं आती थी.
बिल्कुल, अब उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं है. इनसे हटे तो गुड़िया, खिलौना, फिर उसके बाद मिट्टी के घर बनाने लगे थे और मिट्टी के बर्तनों से खेलते थे और बहुत सारी चीजें करते थे. गुड्डा गुड़िया का ब्याह रचाया जाता था, छोटे छोटे मतलब छोटी छोटी पूड़ियां ये सब बनते थे, मतलब घर गृहस्थी का सामान होता था, है ना. तो छोटेपन से ही ये सब चीजें किया जाता था जो कि बड़े होकर हमें वृहद रूप में करना होता था.
जी, और भाई बहन जो थे वो मतलब कहते हैं कि उनके पास समय भी बड़ा रहता था. बड़े भैया को कोई पढ़ता देख ले, बड़ी दीदी को कोई पढ़ता देख ले तो उनकी पेंसिल ले लेंगे, उनकी किताबें ले लेंगे.
हाँ.
लेकिन अब तो कहते हैं कि दो भाइयों और बहनों के पास समय भी शायद इतना नहीं है, छोटे बच्चे भी अपने ही मेरा में रहते हैं.
बिल्कुल
जी.
और किताबें, जैसे तुमने कहा कि ये सब कुछ भी जो है कागज बनाना, कागज पे कुछ लिखना पढ़ना, उसी कागज पे ड्रॉइंग करना है जिसमें कि बड़ी बहन पढ़ रही होगी.
नहीं मिलता था तो दीवालों में भी बना देते लेकिन बनाएंगे, पेंसिल जरूर पकड़ेंगे. जी
बिल्कुल, जो रंग होते थे ना, क्रेयॉन रंग, वो सब कुछ कुछ कराते रहते थे कागज पर चाहे दीवार पर, तुमने कहा. इसके लिए एक बात और है कि कहीं ना कहीं हम भी अब इतने महंगे महंगे घर बनाने लगे, ऐसे ऐसे पेंट करवाने लगे कि बच्चों से अगर उन्होंने एक छोटी सी उसमें बिंदी भी लगा दी तो हम बहुत नाराज होते हैं. तो आप देखें कि क्या हम क्या कर रहे हैं. तो उनको खुला माहौल दें, थोड़ी दीवारें वगैरह दें, उनको रंगने दें, नहीं तो घर का एक कोना ऐसा बना दें कि ताकि वो अपनी मनमानी कर सकें.
जी बिल्कुल,
क्योंकि हम कहते तो हैं कि बच्चे मोबाइल में लगे हैं लेकिन हम उन्हें कितना वक्त दे रहे हैं.
जी जी, कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर जो क्रियाशीलता है उसको आगे आने का मौका जरूर दें.
तो यानी कि जैसे कि बचपन में याद है ना संगीता, कि हम कैसे दाल चावल से खेलते थे, छत पर सूखता रहता था गेहूं, तितलियां पकड़ते थे, लेकिन पहले तो खूब गेहूं पर चलते भी थे, उसको हाथों से तरह तरह का उसी में डिजाइन बना देते थे,
दे दिया जाता था,
दे दिया जाता था.
पता ये था कि ये गेहूं जो है वो बिखरने वाला है तो मुट्ठी भर ले लो और चीट लो.
लेकिन उसके साथ साथ जो सूख रहा होता था कभी कभी, तो उसके साथ चोरी चोरी खेलने में अलग मजा होता था. या यूं कहें कि हम लोग साथ में काम भी करते थे, लोग उठाते थे तो हम लोग उठवाते थे, धुलता था गेहूं घर में,
बिल्कुल.
ये भी दुनिया अलग थी. लेकिन अब बच्चे जो है एनिमेशन की दुनिया में है, मोबाइल की दुनिया में चले गए हैं, है ना. तो वो अलग ही दुनिया तलाश रहे हैं.
जी बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए इसमें अंतर भी होता है कि जब हम कहानियां सुना करते थे तो माँ किस तरह से सुनाती थी या दादी किस तरह से सुनाती थी. माँ अगर साथ कहीं जा रही है तो भाई बच्चे का हाथ पकड़ के ले गई, अब जाए रसोई में कोई काम हो रहा हो या छत पे कोई अचार वचार सुखाने का काम हो रहा हो, लेकिन तो जो भी चीजें होती थी वो बड़ी सजीव थी. अब अगर इन चीजों को देखा जाए, कहानियों को देखा जाए, कुछ भी देखा जाए, तो माँ ये ख्याल रखती थी कि भाई समय भी हो रहा है तो बच्चे को कब कहानी सुनाना है, कब खाना खिलाना है, कब नहलाना है. एनिमेशन में ऐसा नहीं हो सकता.
हाँ, और उसी में कब कहानी सुनाते सुनाते उसको सुला देना है
जी,
वो भी माँ ही समझ सकती है कि हाँ अब ये लोरी का वो समय आ गया कि बच्चे को हल्की हल्की नींद आ रही है और अब हमें अपनी आवाज को थोड़ा सा धीमा करके उसकी वॉल्यूम कम करना है और ताकि वो अब नींद की गोद में जा रहा है तो वो सो जाए बड़े आत्मीयता से. लेकिन सच बात तुमने कहा कि वो बच्चा तो अपने आप मोबाइल का वॉल्यूम कम नहीं करेगा
नहीं.
तो बस कहीं ना कहीं उसकी जो है नींद भी गायब हो जाती है. ऐसे ही भूख प्यास का पता नहीं चलता, उन्हें समय असमय का पता नहीं चलता है, है ना.
जी, और अगर मान लीजिए मोबाइल उनसे ले भी लिया जाए तो फिर मोबाइल की तो जो वॉल्यूम की बात आप कह रही हैं, उनका खुद का वॉल्यूम काफी
बढ़ जाता है.
जी बिल्कुल, तो उनका जो एक कह सकते हैं कि जो एक बौद्धिक विकास होता है उसमें मोबाइल हाँ थोड़ा सा बाधक तो जरूर है.
नहीं, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम अपनी कल्पनाशीलता को छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं और जो भी चीज हम चाहते हैं वो हमें बनी बनाई सामने दिख जा रही
जी,
है.
और उम्र का भी तकाजा कुछ होता है कि बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या देखना है क्या नहीं देखना है.
हाँ.
वो भी एक बड़ी बात होती है. अब माँ को पता है कि भाई हमें कहानी सुनानी है तो हमें किस तरह की कहानी सुनानी है,
अगर किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल.
कब सो गए, माता जी का तो काम हो गया लेकिन बच्चे हैं वो जब उनको दूध पीना था, जब खाना खाना था.
Chup 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 chup, 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 chup 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 chup
तो भाई ऐसा है कि ये तो हो गई बात, लेकिन अक्सर बहुत सारे ऐसे जो हमारे कार्य के क्षेत्र हैं जीविकोपार्जन का जरिया है, इसको कुछ ऐसा मान लिया गया कि ये महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा है, ये पुरुषों के लिए बड़ा अच्छा है। वैसे तो ये मान के चलते हैं कि पुरुषों के लिए सब बहुत अच्छा है, है ना
महिलाओं
लेकिन हमारी बहनों के लिए भी देखो ना, ये मान के चलते हैं ना हम लोग की घर गृहस्थी हमें ही करनी है, तो भाई शिक्षिका बन जाओ बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत छुट्टी मिलेगी और एक सीमित समय के लिए जाना रहेगा, है कि नहीं?
बिल्कुल बिल्कुल जी, लेकिन हाँ ये तो है कि एक सम्मानजनक पेशा है बहुत, और इसमें हमारे जो श्रोता है वो भी जा सकते हैं, हमारी बहनें भी जा सकती हैं, तो सभी जा सकते हैं। और कहा भी गया है देखिए कि गुरु की महिमा बड़ा बखान करते हैं,
हाँ,
है ना?
बिल्कुल, और अभी टीचर्स डे भी गुजरा भी है, है ना
जी, शिक्षक दिवस तो जी, तो किस तरह से हम अलग अलग पदों में करियर बना सकते हैं शिक्षण को लेकर के, उसी विषय में ये है कि प्राथमिक स्तर के टीचर भी हम बन सकते हैं, यानी कि प्राइमरी स्कूल, उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि जूनियर हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक या माध्यमिक स्कूल में टीचर कैसे बन सकते हैं,
फिर डिग्री कॉलेज में आप बन सकते हैं जिसे लेक्चरर कहते हैं, ऐसे ही यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हैं, और केंद्रीय विद्यालय तो है ही जिसमें कि आप शिक्षण के लिए बन सकते हैं जिसको सेंट्रल स्कूल कहा जाता है, यानी शिक्षक के तौर पर आप किसी भी स्कूल कॉलेज में बन सकते हैं। तो भारत में किसी भी कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी के लिए UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट की परीक्षा पास करना होता है, और ये परीक्षा साल में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित की जाती है। इसमें 3 पेपर होते हैं, तो इस तरह से इसकी जानकारी आप रखें और इसे जब क्वालिफाई कर लेंगे तब आप इसके लिए योग्य हो जाएंगे। और फिर ऐसे ही TET होता है
जी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये भी देना पड़ता है, यानी कि ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इस परीक्षा का आयोजन BEd और DEd कोर्स करने वालों के लिए इस क्षेत्र के लिए होता है, और बहुत जगहों पर जरूरी है कि BEd के बाद टीचर या शिक्षक बनने के लिए TET परीक्षा को पास करना जरूरी है। इसमें वो विद्यार्थी भी भाग ले सकते हैं जिनका BEd का रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो परीक्षा पास करने के बाद राज्य सरकार का एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है।
जी हाँ, ऐसे ही फिर केंद्र का ऐसे ही होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूल, तिब्बते स्कूल, नवोदय में शिक्षक बनने के लिए CTET परीक्षा होती है, और इस परीक्षा का आयोजन CBSE की ओर से कराया जाता है। तो सेंट्रल TET परीक्षा में ग्रेजुएट और BA डिग्री प्राप्त जो छात्र होते हैं उन्हें प्रवेश मिलता है, और इसके लिए उम्मीदवार को 60% अंक लाना अनिवार्य है। फिर पास होने पर एक सर्टिफिकेट मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है, जो कि 7 वर्ष तक मान्य होता है।
जी, और TGT और PGT ये राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः ये परीक्षा लोकप्रिय है और वहां के अभ्यर्थी देते हैं। अभ्यर्थियों को ग्रेजुएट और BEd होना चाहिए। PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और BEd डिग्री भी होना आवश्यक है। TGT पास शिक्षक 6th से लेकर 10वीं यानी 6ठी से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और विद्यालयों में शिक्षक के जो पद आते हैं उनकी रिक्तियां जिस हिसाब से हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं।
हाँ, यानी कि जो उसमें नियम है सरकार के वो सब लागू होते हैं।
हाँ, नवोदय स्कूल और केंद्रीय विद्यालय में TGT और PGT बनने के लिए आपका CTET होना भी जरूरी है, इस एग्जाम को पास करना जरूरी है।
और BEd तो आप सब जानते ही है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये एक बहुत ही लोकप्रिय कोर्स है जो बहुत परंपरा से चला आ रहा है बहुत दिनों से, और अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस कोर्स को करें। और पहले 1 वर्ष का था, फिर 2 वर्ष का कर दिया गया, और इसके लिए प्रवेश परीक्षा होती है, और प्रवेश के लिए आपका स्नातक होना ज़रूरी है, यानी आप BA होंगे किसी भी विषय में, ग्रेजुएट होंगे तो आप दे सकते हैं। और हर वर्ष इसका भी आयोजन होता है, फिर आप प्रभारी, अपर प्रभारी, अरे प्राइमरी और हाई स्कूल तक को पढ़ा सकते हैं आप।
जी, और प्राइवेट स्कूल में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो निजी विद्यालय में भी आजकल देखते हैं कि BEd की डिग्री जो
अनिवार्य
हो गई है यहाँ भी।
BEd जो है ना उसमें बिल्कुल शिक्षण की सारी कलाओं को सिखाया जाता है, तो जाहिर है कि जो भी विद्यालय अपने बच्चों को, यहाँ तक कि नर्सरी के भी बच्चों को पढ़वाना चाहता है, वो चाहता है कि एक योग्य शिक्षक उसको मिले।
और BEd में एक ये भी फायदा होता है रणजी कि अगर BEd हो गए तो सभी क्लासेस को पढ़ा सकते हैं,
बिल्कुल
ये एक फायदा है। तो BPEd बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी एक तरह का कोर्स है, इसके लिए शिक्षक के लिए बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए इसमें रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। तो इस पाठ्यक्रम में शिक्षक के लिए 2 कोर्स होते हैं जी, जो उम्मीदवारों ने जैसे ग्रेजुएट लेवल पर या फिजिकल एजुकेशन विषय के रूप में पढ़ा है अगर किसी ने, तो वो लोग 1 वर्ष वाला BPEd कोर्स कर सकते हैं,
और अगर 12वीं में फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है तो वो लोग 3 साल वाला स्नातक कोर्स कर सकते हैं। और ये और भी बहुत तरीके से ये स्पोर्ट्स कॉलेज वगैरह में भी ऐसे शिक्षकों की
नियुक्तियां
होती हैं।
जी जी, और फिर इसके जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के साथ साथ लिखित परीक्षा भी इनकी होती है, यानी कि इनके भी एग्जाम होते हैं, तो इसको पास करने के बाद फिर आपको इंटरव्यू देना होता है।
भाई इसे भी पास करना तो जरूरी है, केवल इंटरव्यू देना नहीं है। ऐसे ही नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी NTT और कोर्स महानगरों में ज्यादा प्रचलित है, 2 वर्ष का कोर्स है। इस कोर्स में प्रवेश 12 के अंकों के आधार पर कई जगहों पर होता है, कई जगह प्रवेश परीक्षाएं होती हैं और इस तरह से प्रवेश मिलता है। तो प्रवेश परीक्षा में जैसा कि है कि सामान्य जानकारी, करंट अफेयर्स, जनरल स्टडी, हिंदी, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और अंग्रेजी के सवाल पूछे जाते हैं, और NTT कोर्स के बाद आप प्राइमरी टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं।
जी, और उसके बाद BTC यानी कि बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, BTC का कोर्स उत्तर प्रदेश में है जो वहाँ होता है सिर्फ, और इसके इसमें जो केवल राज्य के छात्र छात्राएं हैं वो भाग ले सकते हैं, और 2 साल का कोर्स होता है और इसकी भी प्रवेश परीक्षा होती है। इसमें आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तक की निर्धारित की गई है, और BTC कोर्स के बाद उम्मीदवार प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के टीचर भी बन सकते हैं।
और ऐसे ही 12वीं परीक्षा के बाद यानी 12वीं पास करने के बाद आप जूनियर टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपकी योग्यता देखी जाएगी यानी अंक देखे जाएंगे, और प्रवेश परीक्षा दोनों के आधार पर ही प्रवेश मिलता है, लेकिन ज्यादा मतलब इतना प्रचलित नहीं है।
हाँ।
और जैसा कि BEd से ज्यादा प्रचलित है, वैसे ही डिप्लोमा इन एजुकेशन भी होता है, ये भी 2 वर्ष का कोर्स है। अलग अलग प्रदेशों में संगीता अलग अलग कोर्स है।
हाँ।
और ये आपको जानकारी मिलती रहेगी, जरा भी आप देखेंगे आजकल तो बड़ा आसान है किसी भी चीज को ढूंढना, तो आप इसी तरह से तलाश करते रहें। और जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि बहनों के लिए बड़ा उत्तम कोर्स है और एक उत्तम करियर है, है ना
जी। तो जिस अगर BEd करते हैं तो किसी भी राज्य में जाकर के आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन BEd वही जैसा आपने कहा कि राज्य स्तरीय होता है, तो आप उस खास राज्य के लिए बस अपने आवेदन कर सकते हैं।
बिल्कुल, और ऐसे ही अलग अलग प्रदेश के अलग अलग अपने अपने बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं, इनकी जानकारी आप अपने प्रदेश में हासिल करें और टीचर बन जाएं। और केवल ऐसा नहीं है कि आपके लिए बड़ा उपयोगी है, बल्कि शिक्षकों की आवश्यकता देश को भी है, समाज को भी है, और अच्छा शिक्षक बनना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि हम नींव रखते हैं, जब बच्चों को सिखाना बहुत अच्छी बात है, शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण पेशा भी है, बहुत सम्मानजनक है, तो हमें उसका फर्ज भी निभाना चाहिए ना
जी। और साथ ही साथ तो
सखी सहेली का फर्ज।
हाँ, बिल्कुल।
परदेसी का मतलब कि बस गया हाथ से आदमी ना, तो बच्चे भी ऐसे ही हाथ से ना चले जाएं, इस बात का ध्यान रखें बच्चे परदेसी हो इससे पहले आप लोग समझ जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी शान से बताते हैं, अरे हम अपने बच्चे को देखो कैसे गाना रोक दो तो चिल्लाने लगता है।
हाँ।
अरे तो बड़ी तारीफ मत करिए, ये आपके लिए भी और उसके भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
हाँ,
तो
जी।
उसको थोड़ा सा दूरगामी परिणाम जो है उसके बारे में थोड़ा सा सतर्क रहें, लेकिन फिलहाल जो
कई बार तो ऐसा भी कहते हैं भाई हम क्या कर सकते हैं।
हाँ ना,
कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, लेकिन करना है तो हमें ही करना है जो कुछ करना है।
और एक बात और है, जब बच्चा बहुत अच्छा निकलता है तो कहते हैं हम ही ने सब कुछ किया है, तो भाई ये ध्यान रखें कि अब आप बताइए कि आपने क्या किया है। लेकिन फिलहाल जो है आजकल जो मौसम है वो जिस ढंग से बरस रहे हैं, तो कपड़ों का क्या करना है ये बताओ जरा संगीता।
हाँ, कपड़े तो जब बरसात का मौसम होता है तो खासा एक कह सकते हैं कि एक चुनौती बन जाती है कि कपड़ों को किस तरह से रखना है।
जहाँ देखो कपड़े, जहाँ देखो इधर भी कपड़े हैं उधर भी कपड़े हैं,
सूखे भी वहीं रहते हैं, गीले भी वहीं रहते हैं,
गीले भी वहीं रहते हैं। तो क्योंकि आबो हवा में नमी होती है तो जाहिर है कि उसको तुरंत हम अलमारी के अंदर नहीं रख पाते, अगर रख दिया थोड़ी भी नमी है तो अपने आपकी अलमारी में भी सीलन पहुँच जाती है, तो इस तरह से कभी बदबू भी आती है खासतौर से उसमें नमी रह जाने से, और कभी कभी उसमें एक फंगस जैसा भी लग जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें, और पहले तो हमने भी बताया था कि जब अलमारी में रखें तो थोड़ा ज़्यादा सुखा लें उसको, थोड़ी देर पंखे के नीचे रखें, और अगर कोई कपड़ा ज़्यादा नमी है उसमें तो आप उसको आयरन से उसको आयरन कर लें तो वो अच्छी तरह से सूख जाएगा।
जी जी।
और उसके साथ साथ क्या किया जा सकता है और ये बताओ,
ड्रायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग तो आयरन और साथ साथ ड्रायर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जी, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज ये भी देखनी है कि जो वार्डरोब में सीलन होती है वो वहां पर जिस जगह पे अगर सीलन आ गई है तो फिर कपड़ों को तो बचाना बनता ही बनता है। और जो उसमें खासकर देखा जाता है ऐसा भी कि बरसात के मौसम में कपड़ों पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो इसमें दाग भी बहुत सारे आ जाते हैं, तो दाग धब्बे उनका भी ध्यान देना पड़ेगा, खासकर अगर कॉटन के कपड़ों की बात करते हैं।
हाँ ना, तो दाग धब्बे की तो बात है ही, लेकिन लिख रही हैं एक हमारी सहेली कि बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा मेहनत कपड़ों पर ही करनी पड़ती है। कल की बात, कपड़े सुखा रहे थे, इतनी तेज वर्षा आई कि रस्सी से कपड़े हटाना मुश्किल हो गया।
जी,
तो भाई इसके लिए तो हमने पहले भी कहा था कि आप वो ना स्टैंड खरीद लें, बहुत महंगा नहीं आता, बड़ा आसान होता, पूरा का पूरा स्टैंड आप हल्का सा कमरे के अंदर रख लीजिए, है ना।
लेकिन कई जगह ऐसा भी है रेणु जी कि उस तरह के स्टैंड नहीं भी मिलते हैं, तो हैंगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाँ, ये बात सही है, लेकिन फिलहाल जो है कि बाकी सब चीजें तो अपनी जगह, लेकिन अगर कपड़े में थोड़ा बहुत नमी है तो आप कपड़ों के कागज के लिफाफे में उसको रखें, अखबार में लपेट कर रखें, तो जो बदबू है वो नहीं आएगी।
जी जी, पॉलिथिन बैग्स में नहीं रखना चाहिए। हाँ,
पॉलिथिन में नहीं रखना चाहिए।
नहीं, पॉलिथिन बैग्स में बरसात में रखेंगे तो फिर वो ज्यादा गड़बड़ हो जाते हैं कपड़े, तो इससे अच्छा है कि अगर जो पुराने कपड़े होते हैं जैसे सूती के कपड़े होते हैं, पहले समय देखिए कि मम्मी और सब लोग अपनी सूती जो पुरानी साड़ियां होती थी उनको हटाते नहीं थे, उनको रखे रहते थे साफ करके, और जब जरूरत पड़ती थी तो उनमें भी छोटे छोटे से ब्लॉक्स बना करके काट करके आप उसको रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो पुराना तकिए का खोल होता है उसमें भी रखा जा सकता है, कई लोग रखते हैं। और मच्छरदानी भी बड़ी ही जरूरत की चीज है बरसात में।
इसका क्या किया जाए?
इसका अगर नायलॉन की है तो आपको बिल्कुल भी ये ध्यान देना है कि कई लोग ऐसा होता है सोचते हैं कि भाई चलो गर्म पानी में डाल दें जल्दी से तो इसकी मैल निकल जाए, गंदगी निकल जाए, लेकिन ऐसा ना करें। और अगर सूती वाली मच्छरदानी है तो वो भी आप अगर डालना है तो बहुत ही हल्का सा गुनगुना पानी डालें जिससे कि उसकी जो गंदगी है वो साथ में, क्योंकि उसमें बारीक बारीक से छेद होते हैं तो वो साफ हो जाए, उनमें ना रहे कुछ भी। तो इस तरह से जो मच्छर हैं उनसे जो मच्छरदानी हमें बचाती है तो मच्छरदानी को भी गंदगी से बचाना
चाहिए। हाँ। क्योंकि आजकल मच्छर बहुत हैं और मच्छर से भी बचना बहुत जरूरी है।
हाँ।
तो मच्छरदानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, तो उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो अलमारी की हम बात कर रहे हैं, वो अगर कपड़े आपने रखे हुए हैं जैसे तुमने जहाँ कहा संगीता की जहाँ पर नमी है, तो थोड़े दिन कपड़ों को निकाल लें, अलमारी खाली कर दें और उसको भी ड्रायर से आप सुखा सकती हैं उनकी दीवारों को, और पंखा चलाकर छोड़ दें, और जब वो सूख जाए अच्छी तरह तब आप कपड़े फिर से रख लें। और कपड़े अगर रखने हैं आपको तो उसके बाद कपूर की गोलियां पीसकर और ऐसे भी छोटी थोड़ी सी लौंग के साथ पोटली बनाकर रखें अलमारी में, तो इससे जो है कि जो खुशबू आएगी वो अच्छी लगेगी, और जो नमी की जो सीलन वाली जो बदबू है जिसको झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है वो दूर हो जाएगी।
जी जी, वो सिल्वर फिश टाइप की छोटी छोटी से जो चमकीले कीड़े होते हैं तो उनसे भी बहुत खतरा होता है। दाग अगर फिर भी आ गया है तो अगर सिल्क की साड़ी है, कई बार आ जाते हैं दाग, तो सिल्क की साड़ी है तो उसको आप जो पानी पानी है उसमें थोड़ा सा अमोनिया डाल करके धोएं तो उससे वो साफ हो जाएगी।
पानी में क्या
अमोनिया, थोड़ा
अमोनिया
सा,
जी जी बिल्कुल धो दें साफ रहेगा।
और जरीदार साड़ियां जो होती हैं वो उसमें थोड़ा सा आप अगर पानी में सिरके की बूंदें डाल देंगे और तो वो ज्यादा अच्छी तरह से रहेंगी। उनकी जरी कहते हैं कि अगर सिरके की बूंद पानी में डालकर धोया जाए तो उनकी जरी खराब नहीं होती, हाँ काली नहीं पड़ती है। और सिल्क के कपड़ों में, सिल्क के भी कपड़े अगर हैं तो आप उन्हें जैसा कि हमने बताया कि सूती कपड़ों में अगर आप लपेट कर रखेंगे हल्के कपड़ों में तो वो अच्छे रहेंगे, उनकी जरी भी काली नहीं होती है। और जहां तक हो सकता है तो बरसात में ड्राई क्लीनिंग ही कराएं, बहुत अच्छा रहेगा। और हैवी वर्क वाले जो डिजाइनर कपड़े होते हैं उनमें तो अगर ड्राई क्लीनिंग ही कराई जाए तो बड़ा अच्छा होगा।
लेकिन हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा तो किसी भी चीज के दागों से बचाना चाहिए और कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से सुखा कर ही रखना चाहिए। साथ में कपड़ों में रखने वाली दवा नेफ्थलीन, जिसे आम भाषा में कुनैन की गोली कहते हैं, कपड़ों के साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे कपड़े कीड़ों से सुरक्षित होने के साथ साथ एक अच्छी खुशबू भी आती है। हालांकि कुछ लोगों को उससे एलर्जी भी होती
है। तो नीम की पत्तियां भी रख सकते हैं,
लेकिन इनकी एक समस्या है, सुन लो। पर अभी मैं अमरकंटक गया था तो अपनी नई शर्ट में ही दाग लगा कर आ गया हूँ जिसका मिटाना असंभव हो गया है, तो किसी के पास उपाय हो तो बताइए। तो बड़ा मुस्कुराकर इन्होंने लिखा है, तो भाई पहले तो आप ये बताइए कि दाग किस चीज का है, है ना? और कार्यक्रम सुनते रहिए क्योंकि जब
नहीं अलग अलग दाग होते
अलग अलग दाग के अलग अलग उपाय बताते हैं
जी,
है ना?
हाँ, और सूती के कपड़े तो मुझे लगता है कि बरसात के मौसम में हटाई देने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन सिल्क वगैरह है तो उस वो तो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, और साथ ही अगर धोने में अगर इनके फिर भी अगर कॉटन के कपड़े हैं तो धोने के लिए अगर आप डालते हैं इसमें थोड़ा सा क्लोरीन ब्लीच तो उससे भी फायदा होता है इसमें।
एक बार फिर बताओ क्या बताया?
क्लोरीन ब्लीच कहते हैं।
जी, होती है जी
जी। और फिर उसके बाद कपड़ों को जब फोल्ड करके आप रखते हैं तो आप ये देखिए कि टिश्यू पेपर उसमें बीच बीच में लगा दें, क्योंकि हाँ तो उससे
बचे रहते हैं, होगी वो टिश्यू पेपर सोख लेंगे। हाँ,
और परते भी आपस में नहीं मिलती है तो खराब नहीं होते जी। और अगर दाग कुछ इस तरह से मतलब मामूली है तो थोड़ा सा एक चम्मच पानी में नमक अगर आप लगा दें, जैसे कि हल्के अगर दाग हैं तो नमक अगर डाल करके उसमें थोड़ा सा रगड़ दें तो वो दाग छूट जाएंगे।
हाँ, और कुछ होते हैं जो नींबू से छूटते हैं, कुछ कच्चे दूध से छूटते हैं।
हाँ,
तो ये निर्भर करता है किस चीज का दाग है,
जी,
है ना?
और
तो
कभी कभी मोम भी होता है, अगर
मोम भी होता है, तेल आदि के होते हैं तो उसको आप पाउडर खूब अच्छे से डालकर और आयरन कर दें या ऊपर नीचे अखबार रखकर और गर्म उससे आयरन कर दें तो वो कागज तेल सोख लेता है। और हल्दी के दाग है तो बिल्कुल मत घबराइए, वो बार बार अगर धोएंगे तो साफ हो जाएगा। तो इस तरह से चीजें हैं, तो निर्भर करता है कि किस चीज का दाग लगा है।
और बेकिंग सोडा भी इसमें इस्तेमाल होता है कि कीचड़ वगैरह अगर लग गया है तो बेकिंग सोडा मिलाकर आप उसको साफ कर सकते हैं। और सॉफ्ट जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनको तो बेहतर है कि जो खुशबूदार डिटर्जेंट होते हैं उनमें धोएं तो ज्यादा अच्छा है। फैब्रिक कंडीशनर का भी उपयोग आप कर सकते हैं जिससे कि कपड़े जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं।
तो भाई ये सारी चीजें तो है ही, इसके साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें आजकल जो है, खुद भी उससे बचें। और देखो ऐसा है ना कि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है संगीता कि बुखार जो चढ़ रहा है उससे लोग परेशान तो हो रहे हैं लेकिन घबरा रहे हैं कुछ और कि कोरोना तो नहीं हो गया। तो ऐसा नहीं है कि हर बुखार कोरोना नहीं होता है, तो आप लेकिन चिकित्सक को जरूर दिखा दें और ये डर के ना बैठे रहें कि कोरोना हो गया है तो हम किसी को बताएं नहीं, और जो बाकी चीजें हैं उसके जो भी एहतियात हैं उनको बरतें। लेकिन कपड़ों की जो बात हम लोगों ने खासतौर से इसीलिए कही है कि ये जो नमी आदि रह जाती है इस वजह से कहीं ना कहीं हम सर्दी जुकाम हो जाता है और धीरे धीरे फिर वो बुखार के रूप में तब्दील हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है कि जो हमने मच्छर की बात की वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कहीं घर में आपके पानी तो नहीं लगा हुआ है, इस बात का भी ख्याल रखें।
अगर पानी है तो उसको हटा दें बिल्कुल। कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ी थोड़ी सी जैसे भूल हो जाती है, अब गर्मी में कूलर चला लिया लेकिन पता ही नहीं कि उसमें पानी जमा हुआ है, तो उसको आप जरूर ध्यान दें और हटा दें। और जैसा कि रेणु जी हम लोग बात कर रहे थे कपड़े की, तो रंगीन कपड़े जो होते हैं खासकर कॉटन के तो उनसे तो बिल्कुल बचना चाहिए बारिश में, ना निकालें उनको, थोड़े दिन के लिए रख दें तो अच्छा है।
हाँ, वैसे तो हमारे साथियों ने रख दिया होगा लेकिन फिर हम बार बार कहेंगे कि जो पानी की बात है उसको कहीं पे भी जमने ना दे। कूलर आप देख लें, बाकी आपके आंगन में छत के ऊपर या कहीं ऐसी कोई जगह तो नहीं है जहां टायर ट्यूब या कोई पुराना बर्तन पड़ा है जिसमें पानी है पनप रहे हैं उसमें मच्छर, या घर के बाहर कोई छोटा मोटा गड्ढा होता है उसमें बरसात का पानी लग जाता है तो उसमें पानी जमा हो जाता है तो मच्छर बच्चे देने लगते हैं, है ना? तो इस तरह से मच्छरों को पनपने ना दे ताकि आपको ना काटे और ना आप बीमार पड़े, हैं कि नहीं
जी। और डेंगू और जो मलेरिया टाइप की बीमारियां होती
गोलियां ये सब भी आजकल हो रहा है।
हाँ, तो उसमें तो ज्यादा खास सतर्कता की जरूरत पड़ती है।
हाँ।
तो अगर आप किसी तरह से किसी पॉट्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके पानी को बिल्कुल बदलते रहें। देखा ये जाता है कई बार कि मनी प्लांट तो लगा लेते हैं।
हाँ, घर मनी प्लांट लगाते हैं। या कोई ऐसा आपके घर में कोई तीज त्योहार पड़ा या किसी का जन्मदिन पड़ा, कोई ऐसा उत्सव हुआ, तो आप बाजार से बुके आदि भी लाते हैं, पुष्प गुच्छ लाते हैं, उसको पानी में रख देते हैं, तो देखिए उसमें कहीं तो नहीं पानी रह गया है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सजावट की हम करते हैं और भूल जाते हैं।
हाँ।
तो इस बात का ध्यान रखें, है ना, और बार बार घड़ी देखें कि समय तो नहीं हो गया आपका कुछ और करने का, कुछ और जाने का, कुछ और करने का।
नहीं, तो समय समय अभी हम लोग 30-40 सेकंड और बात कर सकते हैं।
बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे साथी जो है ना वो जुड़ते रहते हैं हमसे, और हर सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बहुत सारे हमारे साथियों ने आज भी लिखा है कि 3 बजे का इंतजार रहेगा।
हाँ।
तो आप इंतजार करते हैं 3 बजे का, तो हमें भी उतना ही इंतजार रहता है, और ये 4 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता।
भाई इंतजार भी रहता है और बहुत सारी हम बातें भी करते हैं और साथ साथ इतनी सारी देखिए तैयारियां भी रहती हैं कार्यक्रम की।
तो लेकिन ये तो बता दो कि किस किस फिल्म का गीत आज हमने सुनाया।
आज हमने जिन फिल्मों के गीत सुनाए हैं, भरोसा, अनुराग और स्वर्ण सुंदरी, और साथ ही साथ मिलन, इन फिल्मों के गीत आज हमने सुनवाए हैं।
तो
कुछ और भी गीत सुनवाना चाहते थे लेकिन समय अब बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा है।
तो
सभी सखियों को, सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव
और रेणु चतुर्वेदी का
नमस्कार।